आगे सबक देखिए भाई। قال ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند أبي حنيفة رحمه الله وقال عليه المهر لمولاها اعتبارا بموتها حتف أنفها وهذا لأن المقتول ميت بأجله فصار كما إذا قتلها أجنبي। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया था कि आका अगर अपने गुलाम को निकाह की इजाजत दे तो क्या ये इजाजत सिर्फ निकाह जायज को शामिल होगी या निकाह फासिद को भी शामिल होगी। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि आका ने ये जो इजाजत दी है निकाह की, तो तजव्वुज और निकाह का लफ्ज मुतलक है, ये निकाह जायज को भी शामिल है और निकाह फासिद को भी शामिल है, क्योंकि ये लफ्ज मुतलक है और अलमुतलक यजरी अला इतलाकी ही। लिहाजा गुलाम अगर निकाह फासिद भी कर ले और फिर उसके बाद वती कर ले तो उस पर जो महर लाजिम आएगा वो आका के हक में भी जाहिर है, क्योंकि आका ने निकाह की इजाजत दी है, वो निकाह फासिद को भी शामिल है इमाम साहिब के नजदीक। तो गुलाम ने ये जो निकाह फासिद किया और सोहबत कर ली तो इस सोहबत की वजह से जो महर गुलाम पर आया है वो आका के हक में भी जाहिर है, आका के हक में जाहिर है, लिहाजा आका को ये दैन अदा करना पड़ेगा, उसकी इजाजत से ये दैन गुलाम पर आया है। और अगर आका अदा नहीं करता तो फिर इसी गुलाम को बेचा जाएगा और जो पैसे वसूल होंगे उसके जरिए यह महर अदा किया जाएगा, और अगर पैसे बाकी बच गए तो वह आका के हवाले कर दिए जाएंगे। तो देखा गुलाम पर आने वाला देन आका के हक में जाहिर हो, इसका मतलब यह है कि यानी आका की इजाजत से यह देन आया है, आका सबब बना है इस देन के आने का, लिहाजा इस सूरत में फिर यह देन आका को अदा करना होता है। अगर आका अदा नहीं करेगा तो आका ही के इस गुलाम को बेचा जाएगा, देखो ये गुलाम भी तो आका ही का माल है भाई, लिहाजा इस गुलाम को बेचा जाएगा और उसके जरिए अदायगी की जाएगी। अगर सारा देन अदा हो सका तो सारा अदा किया जाएगा, और अगर सारा अदा ना हो सका तो जिस कदर अदा हो सका वो देन अदा कर दिया जाएगा, और अगर अदायगी के बाद कुछ माल बच जाए तो फिर वो आका के हवाले किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई, आका के हक में देन के जाहिर होने का क्या माना है कि आका के माल में से इसकी अदायगी की जाएगी, वो खुद अदा कर दे या फिर इसके इस गुलाम को बेचकर उसको अदा किया जाएगा भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि आका ने अपने गुलाम को जब इजाजत दी है निकाह की तो ये निकाह फासिद को भी शामिल है, तो निकाह फासिद और फिर उसके बाद सोहबत करने की वजह से जो महर आया है वो आका के हक में भी जाहिर है, लिहाजा वो आका को अदा करना पड़ेगा, अगर वो अदा नहीं करता तो फिर इस गुलाम को बेचा जाएगा और उसके जरिए यह महर अदा किया जाएगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि आका जब अपने गुलाम को निकाह की इजाजत दे तो वह सिर्फ निकाह सहीह को शामिल होती है वह इजाजत, निकाह फासिद को शामिल नहीं। लिहाजा ये जो गुलाम ने निकाह फासिद किया और वती की और इसकी वजह से इस पर महर आया, इसकी तो आका ने इजाजत ही नहीं दी थी, लिहाजा ये देन आका के हक में जाहिर नहीं, लिहाजा आका पर इसकी अदायगी भी जरूरी नहीं और ना इस गुलाम को बेचकर इस महर को अदा किया जाएगा, बल्कि यह देन सिर्फ गुलाम पर ही है। तो अगर कभी जिंदगी में गुलाम आजाद हो गया तो फिर उसके बाद उस गुलाम से इस देन का मुतालबा किया जाएगा और वो पैसे कमाकर लाकर देगा और अदायगी करेगा। तो साहिबैन फरमाते हैं कि आका निकाह की इजाजत दे तो ये निकाह फासिद को शामिल नहीं। वो फरमाते हैं वजह ये है कि निकाह के जरिए मकसूद ये होता है कि कोई शख्स अपने आप को पाक दामन बना दे और अपने आप को हराम से महफूज कर ले, लेकिन ये मकसद निकाह फासिद के जरिए तो हासिल नहीं हो सकता। निकाह फासिद में तो वो औरत उस शख्स पर फिर भी हराम ही रहती है, तो निकाह सही का जो मकसद है वो निकाह फासिद से हासिल नहीं हो सकता, लिहाजा आका की इजाजत निकाह फासिद को शामिल नहीं है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि आका ने जो लफ्ज जिक्र किया था निकाह का वो मुतलक है और अलमुतलक यजरी अला इतलाकी ही, लिहाजा गुलाम को निकाह सही की भी इजाजत होगी और निकाह फासिद की भी इजाजत होगी। और बाकी साहिबैन ने जो जिक्र किया कि निकाह फासिद के जरिए निकाह सही के मकासिद हासिल नहीं होते, उसका भी जवाब दिया कि निकाह फासिद के जरिए भी निकाह के बाद मकासिद हासिल हो जाते हैं, जैसे अगर इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो वो इसी खावंद का शुमार होगा। निकाह फासिद के बाद भी औरत ने अगर बच्चे को जन्म दिया तो वो इसी खावंद का शुमार होगा। देखो नसब साबित हो रहा है निकाह फासिद की वजह से। और नीस निकाह फासिद में वती के बाद अगर जुदाई करवाई जाएगी तो फिर उसके बाद औरत पर इद्दत भी वाजिब होगी, जैसे निकाह सही में औरत पर इद्दत वाजिब होती है जुदाई के बाद। और नीस निकाह सही में जैसे आदमी पर महर वाजिब होता है, निकाह फासिद में भी सोहबत के बाद खावंद पर महर वाजिब होगा। तो देखो निकाह के बाज मकासिद जो हैं वो निकाह फासिद के जरिए भी हासिल हो रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा मसला जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि एक शख्स ने अपने माजून लहू गुलाम जिस पर कर्जे चढ़ चुके हैं जो मदयून है उसका निकाह करवाया, तो क्या आका निकाह करवा सकता है अपने मदयून गुलाम का? तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि हां आका के लिए जायज है, वो अपने मदयून माजून लहू गुलाम का निकाह करवा सकता है, क्योंकि ये आका का माल है ये गुलाम, और हर एक जो है अपने माल की और अपनी चीज की बेहतरी और इस्लाह चाहता है। तो यहां पर भी जो आका को शरीयत ने गुलाम के निकाह की इजाजत दी है इस एतबार से कि वो अपने माल की इस्लाह कर सके भाई, क्योंकि अगर ये गुलाम जिना में मुबतला हो गया तो फिर इस सूरत में इस पर हद जारी होगी, और हद की सूरत में गुलाम को कोई नुकसान पहुंच सकता है, जान भी जा सकती है और कोई और नुकसान भी पहुंच सकता है। तो गुलाम आका का माल है और हर एक को अपने माल की इस्लाह का हक होता है, तो आका के लिए भी जायज होगा वो अपने इस माजून लहू मदयून गुलाम का निकाह करवा सकता है। इस पर इश्काल होता है कि भाई इस सूरत में तो जो मदयून है उनका हक बातिल हो रहा है, इसलिए क्योंकि मसलन अगर वो कर्जखा पांच अफराद थे तो इस गुलाम को बेचा जाएगा और जो पैसे मिलेंगे वो इन पांच अफराद में तकसीम किए जाएंगे, लेकिन अब ये निकाह के बाद औरत का महर भी गुलाम के जिम्मे आ गया, तो अब वही गुलाम के पैसे अब पांच के बजाय छह अफराद में तकसीम होंगे, उस औरत को भी उसका हिस्सा दिया जाएगा, तो इसकी वजह से तो सबके हिस्सों में कमी आ जाएगी। तो ये तो आका दूसरों के हक को बातिल कर रहा है इस निकाह के जरिए। तो उसका भी जवाब दिया साहिबे हिदाया ने कि भाई दूसरों का हक बातिल करना अगर कसदन हो तो फिर ये जायज नहीं होता, लेकिन यहां दूसरों का हक कसदन बातिल नहीं हो रहा बल्कि जिमनन बातिल हो रहा है। असल में तो ये इजाजत शरीयत ने उसको इसलिए दी है कि वो अपने माल की इसलाह कर सके, अपने माल का ख्याल रख सके, लेकिन इसकी वजह से अगर जिमनन किसी का हक भी बातिल हो रहा हो तो उसकी तरफ नजर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां असल मकसूद अपने माल की इस्लाह है, असल मकसूद दूसरों के हक को बातिल करना नहीं है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि कोई शख्स अगर अपनी बांदी का निकाह करवा दे तो आका पर लाजिम नहीं है कि बांदी से खिदमत लेना छोड़ दे और उसे अपने खावंद के सुपुर्द कर दे कि खावंद के पास ही रहा करो, मेरी खिदमत की कोई हाजत नहीं, यह आका पर लाजिम नहीं है। वजह यह कि आका का हक आला है, क्योंकि आका बांदी की पूरी जात का मालिक है और खावंद जो है उसका हक अदना है, क्योंकि वो सिर्फ बांदी के मुनाफा का मालिक है, तो अदना हक की वजह से आला हक को साकित नहीं किया जाएगा। बांदी निकाह के बावजूद आका की खिदमत करती रहेगी और खावन से कहा जाएगा कि जब मौका मिल जाए तो तब अपनी बीवी से सोहबत कर लिया करो। और फिर यह भी बतलाया था आपको साहिब हिदाया ने, अगर आका ने इजाजत दे दी बांदी को कि अपने खावन के पास रहा करो, उसके पास ठिकाना दे दिया और अपनी खिदमत का हक छोड़ दिया, साकित कर दिया, तो इस सूरत में फिर खावन के जिम्मे है कि वो अब अपनी उस बीवी जो बांदी है उसको नफका भी देगा और सुकना यानी रिहाइश भी देगा, ये खावन की जिम्मेदारी होगी। इसलिए क्योंकि औरत का ये जो नफका होता है वो एहतिबास की वजह से होता है कि औरत अपने आप को घर में खावन के लिए रोक कर रखती है, औरत अपने आप को खावंद के लिए घर में रोक कर रखती है, तो इसको कहते हैं एहतिबास भाई, रोकना रोकना। तो ये अपने आप को रोक कर रखती है। तो ये जो नफका खावन के जिम्मे होता है ये औरत के इस एहतिबास की वजह से होता है कि उसने इस खावन की खातिर अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। तो जब एहतिबास पाया जाएगा तो खावन पर नफका भी होगा, उसको नफका देना पड़ेगा, और अगर एहतिबास नहीं तो फिर इस सूरत में खावन पर नफका भी नहीं। तो यहां पर जब आका के पास वो रह रही है तो एहतिबास पाया जा रहा है, लिहाजा खावन पर नफका भी वाजिब होगा। और नीज अगर आका ने अपनी खिदमत का हक साकित कर दिया और बांदी को खावन के पास रहने दिया तो क्या एक दफा इजाजत देने के बाद दोबारा आका उससे खिदमत ले सकता है? कहते हैं हां, आका दोबारा भी उससे खिदमत ले सकता है। जैसे निकाह की वजह से आका का हक साकित नहीं हुआ था, इसी तरह इजाजत देने से भी आका का हक साकित नहीं है, वो दोबारा उसका मुतालबा कर सकता है और दोबारा बांदी से खिदमत ले सकता है। बात समझ में आ गई। और फिर आखिर में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक, गुलाम और बांदी पर आका को विलायत इजबार हासिल है, वो जहां चाहे इनका निकाह करवा सकता है, चाहे इनकी मर्जी हो या मर्जी ना हो। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और यही एक रिवायत इमाम साहिब से भी है, कि आका को गुलाम पर विलायत इजबार नहीं। वजह यह कि आका जो अपने गुलाम का मालिक होता है वो माल होने के एतबार से होता है, और शरीयत ने गुलाम को जो निकाह की इजाजत दी है वो आदमी और इंसान होने की हैसियत से दी है। तो आका गुलाम का मालिक है और एतबार से, और गुलाम को निकाह की इजाजत है और एतबार से, लिहाजा आका को गुलाम पर जबरन निकाह करवाने की विलायत हासिल नहीं होगी। भाई हां, अलबत्ता बांदी पर बिल इत्तेफाक आका को विलायत इजबार हासिल है, वो जहां चाहे इसका निकाह करवा सकता है। वजह यह कि यह बांदी जो है इसके मनाफिया का मालिक आका है, वो इसके साथ सोहबत कर सकता है, तो वो इन मनाफिया का मालिक दूसरों को भी बना सकता है कि किसी और से इस बांदी का निकाह करवा दे, तो फिर बांदी अपने खावन के लिए हलाल हो जाएगी और आका के लिए फिर हराम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब था और इमाम साहिब की एक रिवायत थी कि गुलाम पर आका को विलायत इजबार हासिल नहीं, लेकिन मैंने बताया इंदल अहनाफ गुलाम पर आका को विलायत इजबार हासिल है और नीज बांदी पर भी। वजह यह कि गुलाम और बांदी आका का माल हैं और हर एक को अपनी मिल्कियत की इसलाह का हक दिया है शरीयत ने कि वो अपनी मिल्कियती चीजों का ख्याल रखे, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से रखे। तो गुलाम और बांदी के निकाह की इजाजत होगी आका को, क्योंकि इसके अंदर इनकी इसलाह है, इसकी वजह से वो उस जिना से महफूज हो जाएंगे जो हलाकत या नुकसान तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर जिना करेंगे तो हद जारी होगी और हद हलाकत या नुकसान तक पहुंचाएगी। तो आका को हक है कि वो अपने इस माल को जिना से महफूज रखने के लिए इनका निकाह करवाए जहां चाहे भाई। और अगर ये गुलाम और बांदी मुकातब हैं, अगर मुकातब और मुकातबा हैं तो वो भी अपने आका की इजाजत के बगैर कहीं निकाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर आका उनका निकाह करवाना चाहता है तो फिर याद रखो उनकी इजाजत और रजामंदी जरूरी है। वजह यह कि जो मुकातब और मुकातबा हैं ये तसर्रुफ के हक में आजाद लोगों की तरह हो चुके हैं। मैंने बताया था कि जैसे ही अक़्दे किताबत होगा मुकातब आजाद आदमियों की तरह हो गया, आका इससे जबरन खिदमत नहीं ले सकता, बल्कि जाएगा और जाकर पैसे कमाकर लाएगा, अदा करेगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। तो ये मुकातब और मुतकातबा तसर्रुफ के अंदर किसकी तरह हो चुके हैं? आजाद लोगों की तरह। और आजाद मर्द और औरत पर तो किसी को विलायत इजबार हासिल नहीं होती, लिहाजा इस मुकातब और मुकातबा पर भी आका को विलायत इजबार हासिल नहीं होगी भाई, बल्कि अगर आका इनका निकाह करवाना चाहता है तो इनकी रजामंदी भी जरूरी होगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال ومن زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها عند أبي حنيفة رحمه الله। सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपनी बांदी का किसी से निकाह करवा दिया और फिर बांदी की अभी रुख्सती नहीं की थी, अभी बीवी को खावन के हवाले नहीं किया था कि उससे पहले ही आका ने इस बांदी को कत्ल कर दिया, देखो ये जब बांदी का निकाह करवाया जाता है तो निकाह से महर आएगा, और याद रखो वो महर आका का हक है, वो महर आका को मिलता है। लेकिन यहां पर तो आका ने बांदी को खावंद के हवाले करने से पहले ही कत्ल कर दिया है, तो क्या इस सूरत में आका को महर दिलाया जाएगा खावन से या महर नहीं दिलाया जाएगा? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस बांदी को खावन के हवाले करने से जो मान्या बना है वो आका है। बांदी को बीवी को खावन के हवाले करने से कौन मान्या बना है? आका मान्या बना है। लिहाजा जब आका मान्या बन गया है तो आका को भी अब महर नहीं दिलाया जाएगा, खावन के जिम्मे नहीं है कि वो आका को महर दे क्योंकि आका मान्या बन गया। जब उसने बांदी को खावन के हवाले नहीं किया तो खावन पर भी अब बदल नहीं आएगा भाई, खावन को जब मुबदल नहीं मिला तो अब बदल भी खावन पर नहीं आएगा भाई। तो कहते हैं काला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, वह मनजवजा अम्माताहू, और जिस शख्स ने अपनी बांदी का निकाह करवाया, सुम कतलहा कबला अय्यद खुला बिहा जवजुहा, फिर आका ने इस बांदी को कत्ल कर दिया कबल इसके कि खावंद इसके साथ सोहबत करे, फला महर लहा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो इस बांदी के लिए कोई महर नहीं होगा इमाम साहिब के नजदीक, यानी आका को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसी ने बांदी को कत्ल किया है, वो मान्या बन गया। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, अलैहिल महरु लिमौलाहा, कि इस खावंद पर महर होगा लिमौलाहा, इस बांदी के आका के लिए कि खावन महर अदा करेगा भाई। वजह क्या? वो एतबारम भी मौतिहा हतफा अनफीहा, कयास करते हुए भी मौतिहा हतफा अनफीहा, इस बांदी की तबई मौत पर भाई, अगर बांदी तबई मौत मरती खुद उसका इंतकाल होता तो इस सूरत में तो बिल इतफाक जो है वो खावन को महर देना पड़ता है, क्योंकि मियां बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो निकाह अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है और उस सूरत में महर पक्का हो जाता है। तो जैसे तबई मौत की सूरत में खावंद को महर जरूर देना पड़ता है, यहां आका के कत्ल की सूरत में भी खावंद को महर जरूर देना पड़ेगा। तो साहिबैन इस आका के कत्ल को तबई मौत पर कयास करते हैं। वो कहते हैं देखो, जैसे तबई मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है, इसी तरह अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो दरअसल उसकी उम्र ही इतनी लिखी हुई थी, अगर ये कातिल इसको कत्ल न भी करता तो भी इसी वक्त इस शख्स की मौत आनी थी। तो वो इस कत्ल को भी किस पर कयास करते हैं? तबई मौत पर, क्योंकि तबई मौत में जैसे किसी की जिंदगी पूरी हो जाती है, कत्ल पर भी उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है, उसकी जिंदगी लिखी ही इतनी हुई थी भाई। तो वो फरमाते हैं कि तबई मौत में तो बिल इतफाक खावन को महर देना पड़ता है, तो कत्ल के अंदर भी वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही बांदी मरी है तो इस सूरत में भी खावन को पूरा महर देना पड़ेगा। तो कहते हैं एतबारन भी मौतिहा हतफा अनफीहा, भाई अरबी में कहते हैं माता फुलानुन हतफा अनफीही, हतफ हलाकत को कहते हैं, हलाक होना, और अनफ अनफ नाक को कहते हैं। अरबों का अकीदा था कि कोई शख्स अगर तबई मौत मरता है तो उसकी रूह नाक से निकलती है, और जब कोई शख्स किसी दूसरे को कत्ल करता है तो जहां पर कातिल ने उसको जख्म लगाया है वहां से उसकी रूह निकलती है। तो मकतूल की रूह जख्म से निकलती है, जबकि जो शख्स तबई मौत मरता है उसकी रूह नाक से निकलती है। यह जमाने जाहिलियत के अंदर अरबों का अकीदा था। तो जो शख्स तबई मौत मरता तो उसके लिए वो कहते थे माता हतफा अनफीही, माता हतफा अनफीही, वो अपनी नाक की हलाकत मरा है, वो अपनी ना, देखो ना, हतफा अनफी ही, अपनी नाक की हलाकत, वो अपनी नाक की मौत मरा है, यूं कहो। माता फुलान उन हतफा अनफी ही, फुलां अपनी नाक की मौत मरा है, यानी तबई मौत मरा है। क्या तर्जमा करेंगे? तबई मौत मरा है। तो कहते हैं वकाला अलैहिल महरु लिमौलाहा, और साहिबैन फरमाते हैं कि खावन पर महर होगा लिमौलाहा, इस बांदी के आका के लिए, एतबारम बि मौतिहा हतफा अनफीहा, कयास करते हुए इस बांदी की तबई मौत पर, वहादा, और ये इसलिए ली अन्नल मकतूला मई तुम भी अजल ही। अजल कहते हैं मुकर्रा वक्त को। वो कियास क्यों करते हैं भाई इस कत्ल को, वो तबई मौत पर क्यों कियास करते हैं? मैंने बतला दिया, क्योंकि कत्ल भी किया है तो दरअसल उस शख्स का वक्त ही इतना मुकर्रर था भाई। तो कहते हैं वहादा, और ये इस वजह से है यानी तबई मौत पर इसलिए कियास करते हैं, ले अन्नल मकतूल मई तुम भी अजली ही, इसलिए क्योंकि मकतूल जो है वो मरा है भी अजली ही, अपने वक्त मुकर्रा पर, अपने वक्त मुकर्रा पर वो मरा है। फसार कमा इदा कतलहा अजनबी यून, तो ये इसी तरह हो गया जैसे किसी अजनबी ने इसको कत्ल किया हो। भाई कोई अजनबी कत्ल करे बांदी को, फिर तो बिल इतफाक खावंद को महर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आका का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे कोई अजनबी इस बांदी को कत्ल करे तो इस सूरत में पूरा महर देना पड़ेगा, तो इसी तरह अगर आका भी कत्ल कर देगा तो पूरा महर देना पड़ेगा, क्योंकि इस बांदी की उम्र लिखी ही इतनी थी। वह लहू, और इमाम साहिब की दलील यह है अन्नहु मन अल मुबदला कबल तस्लीमी, कि आका ने रोक लिया अल मुबदला मुबदल को यानी मुनाफ़े बुज़ा को, आका ने रोक लिया कबल तस्लीमी अदायगी से पहले ही। मुनाफ़े बुज़ा जो है खावंद के हवाले करने से पहले ही आका ने रोक दिए बांदी को कत्ल करके। तो कहते हैं वलहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु मनअल मुबदल कबल तस्लीमी, और इमाम साहब की दलील यह है कि आका ने मुबदल को रोक लिया है सुपुर्द करने से पहले। फयुजाजा बिमनअल बदली, तो उसको बदला दिया जाएगा बदल को रोक कर, बदल के रोकने के साथ उसको बदला दिया जाएगा कि उसको बदल यानी महर नहीं दिया जाएगा। कमा इधर तद्दतिल हुर्रतु, जैसे कि कोई आजाद औरत मुर्तद हो जाए। अलआयाज़ु बिल्ला। भाई याद रखो, एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और ये औरत बाद में मुर्तद हो जाती है तो निकाह इस सूरत में फसख हो जाएगा भाई, निकाह खत्म हो जाएगा और इस औरत को कैद में डाला जाएगा यहां तक कि वो तौबा कर ले या इसी कैद में उसका इंतकाल हो जाए भाई। अगर कोई मर्द मुर्तद होगा तो उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी इस्तेहबाब के तरीके पर, और फिर अगर वो वापस मुसलमान नहीं होता तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मुर्तद्दा औरत को कत्ल नहीं किया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये भी याद रखें, अगर उसका किसी से निकाह हुआ था तो निकाह भी फसख हो जाएगा भाई, उसका मुर्तद होते ही निकाह फसख हो जाएगा। आप एक औरत मुर्तद्दा हुई और उसका निकाह हो चुका था तो अगर खावंद ने सोहबत कर ली थी फिर तो सोहबत की वजह से ही महर पक्का हो गया था, वो मुर्तद्दा होने के बाद भी उसी को मिलेगा भाई, फिर तो खावंद के जिम्मे आ चुका है। लेकिन यहां जिक्र कर रहे हैं कि सोहबत से पहले औरत मुर्तद्दा हो गई और सोहबत से पहले अगर जुदाई आ जाए तो फिर निस्फे महर दिया जाता है, फिर निस्फ महर दिया जाता है। लेकिन याद रखो, यहां मुर्तद्दा ये औरत हुई है, यहां माने औरत की तरफ से आया है, जुदाई औरत की तरफ से आई है, लिहाजा इस औरत को निस्फ महर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये माने बन गई तस्लीम बुजहा से। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जैसे मुर्तद्दा जो है बिल इतफाक उसको महर नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि वो मान्या खुद बनी है, इसी तरह यहां पर भी आका खुद मान्या बना है मुनाफ़े बुज़ा सुपुर्द करने से, लिहाजा आका को महर नहीं मिलेगा। तो इमाम साहेब इस आका को कियास करते हैं मुर्तद्दा पर, तो जैसे मुर्तद्दा मान्या बनती है तो उसको महर नहीं दिया जाता, तो ये आका भी मान्या बन गया है, इसको भी महर नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देख लीजिए तर्जमा वलहू, इमाम साहिब की दलील ये है अन्नहु मनअल मुबदल कबल तस्लीमी, के आका ने सुपुर्द करने से पहले ही मुबदल को रोक लिया है। फयुजाजा बिमनअल बदली, तो आका को बदला दिया जाएगा बदल को रोक कर। कमा इधर तद्दतिल हुर्रतु, जैसे कि आजाद औरत जो है मुर्तद हो जाए। अलायाजु बिल्ला। वल कत्लु फी अहकामि दुनिया जुइला इतलाफन हत्ता वजबल किसास वद्दियतु। जी साहिबैन ने आका के कत्ल को कियास किया था तबई मौत पर, और तबई मौत के अंदर तो बिल इत्तेफाक महर देना पड़ता है, लिहाजा आका के कत्ल की सूरत में भी महर देना पड़ेगा। इमाम साहब फरमाते नहीं, आप आका के कत्ल को तबई मौत पर कयास नहीं कर सकते। वजह यह कि तबई मौत के अंदर तो कोई दुनियावी अहकाम नहीं है, लेकिन कत्ल के अंदर तो दुनियावी अहकाम मौजूद हैं। कत्ल को तो लोग इहलाक शुमार करते हैं कि इसने फुलां की जान ले ली है, फुलां को हलाक कर दिया है, तो कत्ल को लोग तबई मौत की तरह शुमार नहीं करते। और कत्ल के अंदर तो अगर जानबूझकर कत्ल किया हो तो वहां किसास आता है भाई, उस कातिल को भी बदले में कत्ल किया जाएगा। और अगर गलती से कत्ल हुआ था तो फिर वहां दियत आया करती है भाई। तो मालूम हुआ आप कत्ल को तबई मौत पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि तबई मौत के तो कोई दुनियावी अहकाम नहीं है, लेकिन कत्ल के तो दुनियावी अहकाम मौजूद हैं। कत्ल को तो इहलाक शुमार किया जाता है कि इसने दूसरे की जान ले ली है, और इस सूरत में दुनियावी अहकाम आते हैं। अगर जानबूझकर कत्ल किया है तो किसास आता है, और गलती से कत्ल किया है तो दियत आती है। लिहाजा दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। कहते हैं वलकत्ल फी अहकाम दुनिया, और कत्ल जो है दुनियावी अहकाम में, जो इला इतलाफन, इसको इतलाफ करार दिया गया है। इतलाफ का माना है तलफ करना, हलाक करना, यानी इसको तबई मौत शुमार नहीं किया जाता बल्कि इसको इहलाक शुमार किया जाता है। तो कहते हैं वलकत्ल फी अहकाम दुनिया जो इला इतलाफन, और कत्ल जो है दुनियावी अहकाम में इसको इहलाक करार दिया गया है। हत्ता वजब अल किसास हुआ दियत, यहां तक इसकी वजह से किसास और दियत वाजिब होते हैं। फकदा फी हक इल महरी, तो इसी तरह महर के हक में भी होगा। बात समझ में आ गई, महर के हक में भी इस कत्ल को तबई मौत शुमार नहीं किया जाएगा बल्कि इहलाक शुमार किया जाएगा कि इसने बांदी को क्या किया है, हलाक किया है, यह मान्या बना है मुनाफे गुजरा सुपुर्द करने से। लिहाजा आका को भी यह बदला दिया जाएगा कि अब महर उसको नहीं मिलेगा, महर को उससे रोक लिया जाएगा भाई। आगे देखिए, व इन कतलत हुर्रतुन नफ्सहा कब्ल अन यदखुल बिहा ज़ौजुहा। अब दूसरी सूरत है, एक शख्स ने एक औरत से निकाह कर लिया और रुख्सती से पहले ही इस औरत ने खुदकुशी कर ली, इस औरत ने खुदकुशी कर ली, तो क्या इस औरत को महर मिलेगा या नहीं? क्योंकि आपने जाब्ता पढ़ा है कि खावंद सोहबत कर ले तब भी महर पक्का होता है, और मियां बीवी में से किसी एक का इंतकाल हो जाए फिर भी महर पक्का हो जाता है, महर देना पड़ता है। तो किस औरत ने खुदकुशी की है, इसने भी तो मुनाफे बुसा को रोका है खावन के हवाले करने से पहले, तो क्या इसको महर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वहां हमारे अइमा फरमाते हैं इस औरत को महर मिलेगा। वजह यह है क्योंकि यह खुदकुशी जो है इसका कोई दुनियावी हुक्म नहीं है, इसकी वजह से किसी पर किसास या दियत वगैरह नहीं आती, कोई दुनियावी हुक्म नहीं है, लिहाजा इसको तबई मौत की तरह शुमार किया जाएगा। जैसे तबई मौत का कोई हुक्म नहीं होता, इसका भी कोई दुनियावी हुक्म नहीं है, और तबई मौत के अंदर तो बिल इत्तेफाक पूरा महर देना पड़ता है, तो यहां भी पूरा महर देना पड़ेगा। तो कहते हैं वह इन कतलत हुर्रतुन नफ्सहा, और अगर कत्ल कर दिए किसी आजाद औरत ने नफ्सहा अपने आप को अपनी जात को, कबल अयद खुलबिहा ज़ौजुहा कबल इसके कि खावंद इसके साथ सोहबत करे, फलहल महरू, तो इस सूरत में औरत के लिए महर होगा और वो उसके फिर वारिसों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद तो खुदकुशी कर चुकी है भाई। फलहल महरू, तो इस औरत के लिए महर होगा, खिलाफन ले जुफर रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के। इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, ये औरत जिसने खुदकुशी की है ये भी मान्या बन गई, इसने भी मुनाफे बुज़ा खावन के हवाले नहीं किए, तो ये औरत मान्या बन गई, और जो भी मुबदल से मान्या बनेगा उसको भी बदल यानी महर नहीं मिलेगा भाई। वो इसको कयास करते हैं मुर्तदा पर, जैसे मुर्तद्दा मान्या बन गई थी मुनाफे गुजा खावंद के सुपुर्द करने से, तो लिहाजा उसके लिए भी बदल रोक लिया जाएगा यानी महर उसे नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आका अपनी बांदी को कत्ल कर दे, जैसे ऊपर मसला मतन में बयान हुआ, तो इमाम साहब के नजदीक आका अगर अपनी बांदी को कत्ल कर दे खावंद के सुपुर्द करने से पहले, तो इस सूरत में आका को भी महर नहीं मिलता, क्योंकि आका मान्या बन गया है। जैसे मुर्तद्दा मान्या बनी थी, इसी तरह ये आका भी क्या बन गया, मान्या बन गया। जब ये मुबदल के लिए मान्या बन गए तो इनसे भी बदल को रोक लिया जाएगा यानी महर इनको नहीं मिलेगा। तो बात चल रही थी कोई आजाद औरत है वो खुदकुशी कर लेती है, आइंद अल अहनाफ इस औरत को महर मिलेगा, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, ये औरत भी मानिया बन गई है लिहाजा इसको भी महर नहीं मिलेगा। वो इसको कयास करते हैं मुर्तद्दा पर और वो आका जिसने बांदी को कत्ल किया हो, और मुर्तद्दा को तो महर नहीं मिलता, इसी तरह वो आका जो अपनी बांदी को कत्ल कर दे उसको भी महर नहीं मिलता क्योंकि वो मानिया बन गए हैं, तो ये खुदकुशी करने वाले भी मानिया बन गई है लिहाजा इसको भी महर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं खिलाफन ली जुफर रहमहुल्ला बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्ला के हुआ या तबीरहु बिर्रिद्दती, वो इसको कयास करते हैं मुर्तद होने पर, वह भी कत्ल मौला अमतहु और आका के अपने बांदी को कत्ल करने पर, वो इसको कयास करते हैं बिर्रिद्दती वह भी कत्ल मौला अमतहु, वो इसको कयास करते हैं मुर्तद होने पर और आका के अपने बांदी के कत्ल करने पर। वल जामिउ मा बय्यन्नाहु, और इल्लत जामिआ वो है जो हमने बयान कर दी कि इनमें से हर एक मानिअ बन रहा है, लिहाजा जब ये मुबदल में मानिअ बने हैं तो बदल को भी इनसे रोक लिया जाएगा। वलना, और हमारी दलील यह है, अन्ना जिनायत अलमर अला नफ्सी ही, कि कोई शख्स अपनी जात पर जो जिनायत करता है यानी अपने आप को नुकसान देता है, अपने आप को कत्ल करता है, तो ये गैर मोतबरतिन फी हक अहकाम दुनिया, ये दुनियावी अहकाम के हक में गैर मोतबर है, यानी इसकी वजह से कोई दुनियावी हुक्म नहीं आता, न किसास आता है और ना दियत वगैरह आती है। फशाबहा मौतहा हत्फ अनफीहा, तो ये अपने आप को कत्ल करना ये मुशाबे हो गया मौतहा हत्फ अनफीहा अपनी तबई मौत के, तो ये औरत का अपने आप को कत्ल करना उसकी अपनी तबई मौत के मुशाबे हो गया। बिखिलाफ कत्ल मौला अमतहु, जी इमाम जुफर ने किस पर कयास किया था कि आका अपनी बांदी को कत्ल कर देता है तो वहां उसको महर नहीं मिलता क्योंकि आका मानिअ बन गया है, इसी तरह ये औरत भी मानिअ बन गई है। हम कहते हैं नहीं, दोनों में फर्क है, औरत ने खुदकुशी की है तो उसकी मौत तबई मौत की तरह है क्योंकि वहां पर कोई दुनियावी हुक्म नहीं आता, लेकिन आका अगर अपनी बांदी को कत्ल करता है तो याद रखो इस सूरत के अंदर दुनियावी अहकाम आते हैं, चुनांचे आका पर कफारा वाजिब होता है जी। उसने अपनी बांदी को कत्ल किया है तो उस पर कफारा वाजिब होगा, और कफारा कत्ल याद रखो वो एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा या 60 रोजे मुसलसल रखना पड़ेंगे। कत्ल का कफारा क्या है कि एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा या 60 मुसलसल रोजे रखना पड़ेंगे, तो यहां पर आका पर भी कफारा आएगा। लेकिन अगर जानबूझकर कत्ल किया है तो किसास नहीं आएगा आका पर, और अगर गलती से कत्ल किया है तो दियत आती है, वो दियत भी आका पर नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि किसास और दियत जो है वो उसके लिए मुतालिब चाहिए, मुतालबा करने वाला, भाई क्या चाहिए, मुतालबा करने वाला चाहिए। ये बांदी इस आका की थी तो मुतालबा करने वाला भी कौन बनेगा, यही आका, और मुतालबा ये करेगा भी किससे, अपने आप से, क्योंकि कातिल तो ये खुद है, तो यही आका मुतालिब भी बन जाएगा और मुतालब भी बन जाएगा, और एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता भाई, लिहाजा इसलिए किसास और दियत नहीं आएंगे। और नीज इसलिए भी कि ये जाब्ता याद रखना कि ये जो हुदूद और किसास हैं ये अदना शुबे से भी साकित हो जाते हैं, हद जो शरई सजाएं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, अदना शुबा भी आ जाए तो हद क्या होती है, साकित हो जाती है, इसी तरह किसास भी शुबे की वजह से साकित हो जाता है। और यहां पर भी ये बांदी इस आका की थी, ये आका इसका मालिक था तो अपनी मिल्कियत होने की वजह से आका से किसास साकित हो जाएगा, क्योंकि अपनी मिल्कियत को तलफ किया है, अपनी मिल्कियत को खत्म किया है और अपना नुकसान किया है, तो अपनी मिल्कियत को तलफ करने और अपनी मिल्कियत को हलाक करने की वजह से आका पर किसास नहीं आएगा। भाई भाई देखो, कत्ल की वजह से कभी कफारा आता है, कभी किसास आता है और कभी दियत आती है, आका पर किसास और दियत तो नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि इस सूरत में मुतालिब और मुतालब एक ही शख्स बनेगा और एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता, मुतालबा करने वाला और होना चाहिए और जिससे मुतालबा किया जा रहा है वो और होना चाहिए। और नीज किसास इसलिए भी साकित हो जाएगा कि यह बांदी इसका अपना माल था भाई, तो अपनी मिल्कियत को तलफ करने और अपनी मिल्कियत को हलाक करने की वजह से आका पर किसास नहीं आएगा भाई। ये इसी तरह है जैसे बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे, याद रखो अगर बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे तो वहां किसास नहीं आता, किसास नहीं आता। वजह यह कि वहां पर भी शुबाए मिल्क है भाई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए और अपने बेटे की शिकायत की कि वो मुझसे माल को छुपा कर रखता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे को बुलवाया और उनसे कहा अंता व मालुकली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं भाई। तो देखो इस हदीस की वजह से शुबाए मिल्क आ गया कि बेटा भी क्या है, बाप की मिल्कियत है, तो इस शुबाए मिल्क की वजह से अब बाप पर से किसास साकित हो जाएगा। तो जब शुबाए मिल्क की वजह से किसास साकित हो जाता है तो इस मसले के अंदर तो आका ने अपनी बांदी कत्ल की है जो हां शुबाए मिल्क नहीं है बल्कि बाकायदा उसकी अपनी मिल्क है, वो उसका अपना माल है, तो जब शुबाए मिल्क की वजह से किसास साकित हो जाता है तो अपनी मिल्कियत होने की सूरत में तो बतरीके औला किसास साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और नीज नीज कुरान में है मां बाप के बारे में फला तकुल लहुमा उफ़िन, कि मां बाप को उफ भी ना कहो, तो अगर बाप पर किसास आएगा तो बाप को तो इस किसास की वजह से तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है जब कत्ल किया जाएगा तो तकलीफ होगी, और यह तकलीफ का सबब कौन बना, बेटे का कत्ल, तो लिहाजा गोया बेटे की तरफ से तकलीफ आई, तो जब उफ कहने से मना किया गया है, उफ की तकलीफ देने से मना किया गया है, तो कत्ल की तकलीफ से बतरीके औला मना होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा तो बात क्या चल रही थी कि आका अपनी बांदी को कत्ल करे तो वहां किसास भी नहीं आएगा और दियत भी नहीं आएगी, अलबत्ता कफारा आएगा, कफारा आएगा। और कफारा क्या है कि एक मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा या 60 रोजे मुसलसल रखना पड़ेंगे। तो बात चल रही थी इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने खुदकुशी को आका के कत्ल पर कयास किया था, हमने कहा नहीं, खुदकुशी तो तबई मौत की तरह है, उसका कोई दुनियावी हुक्म नहीं है, जबकि आका का कत्ल उसमें तो दुनियावी अहकाम आते हैं भाई, चुनाचे आका पर कफारा वाजिब हो जाता है, तो लिहाजा दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कयास नहीं किया जाएगा। खुदकुशी तबई मौत की तरह है और आका का अपनी बांदी को कत्ल करना यह तबई मौत की तरह नहीं है, इसमें दुनियावी अहकाम यानी कफारा आता है। और नीज उन्होंने कयास किया था मुर्तद होने पर, जैसे मुर्तदा जो है वो मानिअ बन गई, वो फरमाते हैं ये खुदकुशी करने वाली भी मानिअ बन गई तो इसको भी महर नहीं मिलेगा, हम कहते हैं नहीं आप मुर्तदा पर भी इसको कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मुर्तदा के अंदर भी दुनियावी अहकाम आते हैं, वो जब मुर्तदा होती है तो देखो निकाह फसख हो जाता है उसका, और नीस नीस उसको जेल में डाला जाता है, कैद में डाला जाता है, तो मुर्तद्दा के अंदर दुनियावी अहकाम हैं और खुदकुशी करने वाली में दुनियावी अहकाम नहीं है, तो लिहाजा आप इस खुदकुशी करने वाली को मुर्तद्दा पर कियास नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में फर्क है भाई, एक में दुनियावी अहकाम है और एक में दुनियावी अहकाम नहीं है भाई। वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्ना जिनायत अल मरई अला नफसी ही, के किसी शख्स की जिनायत अपनी जात पर गैर मोतबरतिन फी हक अहकाम दुनिया, ये दुनियावी अहकाम के सिलसिले में गैर मोतबर है, कोई शख्स अपनी जात पर जिनायत करे तो यह दुनियावी अहकाम के सिलसिले में गैर मोतबर है, दुनियावी अहकाम नहीं आते। फशा बहा मौतहा हतफ अनफीहा, तो इस औरत का अपने आप को कत्ल करना यह मुशाबे हो गया इसकी अपनी तबई मौत के, बिखिलाफ कत्ल मौला अमतहू, बखिलाफ आका के अपने बांदी को कत्ल करना, लिया नहू यौत बरूफी अहकाम दुनिया, वो दुनियावी अहकाम के सिलसिले में मोतबर है, हत्ता तजिबुल कफारत अलैही, यहां तक कि आका पर कफारा वाजिब होता है। भाई याद रखना यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा। मैंने बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो यह कि हत्ता का माबाद जो है वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह है कि हत्ता जो है सबबियत या गाया का फायदा दे, और यहां ये शर्तें पूरी नहीं है, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा, हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। आगे देखिए भाई, वह ईदा तज़व्वजा अमतन फल इदनु फिल अज़ली इलल मौला इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ان الاذن اليها। भाई यहां अज़ल का मसला आया। अज़ल इसे कहते हैं कि इंसान बीवी के साथ सोहबत करे और इखराज मनी खारिज में करे ताकि औरत हामिला ना हो, ताकि कहीं हमल न ठहर जाए। तो हमल से अपने आप को बचाने के लिए खारिज के अंदर मनी का इखराज करना, इसको अज़ल कहते हैं। भाई अब एक शख्स अपनी बीवी से अज़ल करता है तो याद रखो ये जो औलाद है ये बीवी का भी हक है, सिर्फ खावंद का हक नहीं बल्कि बीवी का भी हक है, तो इसके अंदर बीवी की इजाजत जरूरी है। अब मसला ये कि एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया है तो इस बांदी से अज़ल करने में क्या इस बांदी से इजाजत लेना होगी या इसके आका से इजाजत लेना होगी, यानी खावंद कोई ऐसी सूरत इख्तियार करता है जिससे औरत को हमल न ठहर सके तो क्या इसके लिए इस बांदी से ये जो इसकी मनकूहा है इससे इजाजत लेना पड़ेगी या इसके आका से इजाजत लेना पड़ेगी। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो बांदी से औलाद पैदा होती है ये भी उसी आका के गुलाम और बांदियां होते हैं। तवज्जो है, मैंने बताया था कि औलाद आजादी और गुलामी के अंदर मां के ताबिया होती है, अगर मां आजाद है तो औलाद आजाद और अगर मां बांदी है तो औलाद भी गुलाम और बांदियां होंगे। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस बांदी से जो औलाद होगी वो इसी आका के गुलाम और बांदियां होंगे, मालूम हो वो इस आका का हक है, ये इसकी औलाद क्या है आका का हक है, लिहाजा यहां अज़ल करने में बांदी से इजाजत नहीं लेना पड़ेगी बल्कि आका से इजाजत लेना पड़ेगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, यहां पर यह सोहबत जो है यह इस बांदी का हक है, हत्ता के अगर मसलन देखो एक शख्स ने एक आजाद, दूसरी सूरत देख लें, एक शख्स ने एक आजाद औरत से निकाह किया है तो याद रखो आप ये इस शख्स की मनकूहा है और सोहबत अब इस औरत का हक है, खावंद पर लाजिम है कि इसके साथ सोहबत करे, अगर खावंद वैसे ही इसको रोक कर रखता है इसको छोड़ता भी नहीं और सोहबत भी नहीं करता तो फिर इस सूरत में इसकी बीवी काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकती है और फिर काजी खावंद को हुक्म देगा वती का। तो लिहाजा जैसे आजाद औरत जो है वती के सिलसिले में मुतालबा कर सकती है, भाई दलील चल रही है साहिबैन की, साहिबैन फरमाते हैं कि जैसे आजाद औरत जो है वो काजी के पास जाकर वती का मुतालबा कर सकती है, इसी तरह ये वती बांदी का हक है, हत्ता कि ये काजी के पास जाकर भी वती का मुतालबा कर सकती है, जैसे आजाद बीवी जो है वो काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकती है, ये बांदी भी काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकती है, तो लिहाजा मालूम हुआ ये वती इस बांदी का हक है जी। जब ये इस बांदी का हक है तो यहां पर अज़ल के अंदर भी खावंद को इसी से इजाजत लेना पड़ेगी। जबकि इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि बांदी से पैदा होने वाली औलाद वो आका का हक है, लिहाजा वहां आका से इजाजत लेना पड़ेगी। मसला समझ में आया? तो कहते हैं वह ईजा तज़व्वजा अमतन, और जब किसी शख्स ने किसी बांदी से निकाह कर लिया, फल इज़्नु फिल अज़ली इलल मौला, तो अज़ल के अंदर इजाजत जो है इलल मौला वो आका के सुपुर्द होगी, यानी आका से इजाजत लेना पड़ेगी। इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम साहब के नजदीक, वान अबी यूसुफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला, और साहिबैन के नजदीक, अन्नल इदना इलैहा, कि इजाजत इसी मनकूहा बांदी के सुपुर्द है, इसी से इजाजत ली जाएगी। लिअन्नल वत्अ हक्कुहा, इसलिए क्योंकि वती जो है ये इस बांदी का हक है। हत्ता सबता लहा विलायतुल मुतालबती, यहां तक कि इसके लिए मुतालबे की विलायत भी साबित है, ये काजी के पास जाकर भी मुतालबा कर सकती है। वफिल अज़ली तनकीस हक्किहा, और अज़ल के अंदर तो इसके हक में कमी करना है, खावन क्या कर रहा है, अजल के जरिए इसके हक में कमी करना चाहता है। फयुश्तरतु रिजाहा कमाफिल हुर्रती, तो इसी मनकूहा बांदी की रजामंदी शर्त होगी कमाफिल हुर्रती, जैसे कि आजाद औरत में है कि अगर आजाद औरत मनकूहा हो तो उस अजल में उससे इजाजत लेना पड़ेगी। बिखिलाफिल अमतिल ममलूकती, बखिलाफ उस बांदी के जो उसकी ममलूका हो, वती करने वाले की अपनी ममलूका हो उस बांदी के, लिया नहु ला मुतालबत लहा, उसके लिए कोई मुतालबा नहीं है। भाई बांदी के साथ आका के लिए सोहबत जायज होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आका जरूर उससे सोहबत करे, बांदी को तो अमूमन काम काज के लिए रखा जाता है, लिहाजा आका की मर्जी है सोहबत करे या न करे। हत्ता कि ये जो आम बांदी है ये मुतालबा भी नहीं कर सकती काजी के पास जाकर वती का, मालूम हुआ ये वती इसका हक नहीं है। तो लिहाजा जब वती इसका हक नहीं है तो इस ममलूका बांदी के अंदर अजल के लिए इजाजत लेने की भी आका को जरूरत नहीं। बिखिलाफिल अमतिल ममलूकति, बखिलाफ वो बांदी जो उस वती करने वाले की ममलूका हो, लिअन्नहु ला मुतालबत लहा, उसके लिए कोई मुतालबा नहीं है यानी उसे मुतालबे का हक नहीं है। फला युअतबरु रिजाहा, लिहाजा उसकी रजामंदी भी मुअतबर नहीं है। वजह जाहिर रिवायती, जाहिर रिवायत की वजह यह है, वो जो मतन में आया था मतन में आया था, इमाम साहब क्या फरमाते हैं कि मनकूहा बांदी से खावंद अजल करना चाहता है तो किससे इजाजत लेना पड़ेगी, उसके आका से, उसके आका से इजाजत लेना पड़ेगी, तो उसकी अब वजह जिक्र करने लगे हैं। वजह जाहिर रिवायती, जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन अजल युखिल बिमकसूद वलदी, कि अजल जो है उसकी वजह से खलल आता है मकसूद वलद के अंदर। यह मकसूद मुजाफ है, अलवलदी मुजाफुन इलह है, और यह इजाफत बयानी है। इजाफत बयानी किसे कहते हैं, जिसमें मुजाफिल मुजाफ का बयान करता है। मुजाफ क्या है, मकसूद। अन्नल अजला युखिल्लु बि मकसूदिन, जरा इजाफत को तोड़ दें, अन्नल अजला युखिल्लु बि मकसूदिन, कि अजल खलल डालने वाला है मकसूद में। भाई वो मकसूद क्या है, अलवलदी, वो जो वलद है, निकाह के जरिए वो जो बच्चा मकसूद होता है उसमें अजल की वजह से खलल आएगा, बच्चा नहीं हो सकेगा। तो कहते हैं वजह जाहिर रिवायती, जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन्नल अजल युखिल्लु बिमकसूदिल वलदी, कि अजल जो है खलल डालने वाला है उस मकसूद में जो कि वलद है। वह हुआ हक्कुल मौला, और वो वलद तो आका का हक है। फयुअतबरु रिजाहु, लिहाजा इसलिए आका की रजामंदी मोतबर होगी, उससे इजाजत लेना पड़ेगी। वह बिहादा फारकतिल हुर्रता, और इस वजह से यह मनकूहा बांदी जुदा हो गई आजाद औरत से। साहिबैन ने इस मनकूहा बांदी को किस पर कियास किया था, आजाद बीवी पर, और जैसे ये वती आजाद औरत का हक होता है, हत्ता कि उसे मुतालबे का भी हक है, इसी तरह वो फरमाते हैं कि ये मनकूहा बांदी से जो वती है ये इस बांदी का भी हक है, हत्ता कि ये भी मुतालबा कर सकती है। तो इस मनकूहा बांदी को उन्होंने किस पर कियास किया था, आजाद औरत पर, और आजाद औरत के अंदर तो खामंद उसकी मर्जी के बगैर अजल नहीं कर सकता, तो इस बांदी के अंदर भी उसकी मर्जी के बगैर अजल नहीं कर सकता। तो उसका जवाब दे रहे हैं, वह बिहादा फारकतिल हुर्रता, वह बिहादा, और इस दलील से यह बांदी जुदा हो गई आजाद औरत से, दोनों में फर्क आ गया। भाई एक जैसी चीजों को एक दूसरे पर कयास करते हैं, दो मुख्तलिफ चीजों को एक दूसरे पर कयास नहीं किया जाता। तो यहां कहते हैं हमने ये जो हमने दलील जिक्र की इससे दोनों में फर्क हो गया कि मनकूहा बांदी के अंदर जो औलाद है वो आका का हक है, और आजाद मनकूहा के अंदर जो औलाद है वो इस आजाद औरत का अपना हक है। तो दोनों मुख्तलिफ हो गई, एक में औलाद आका का हक और दूसरे में औलाद उसका अपना हक। तो दोनों जब अलग अलग हैं तो एक को दूसरे पर आप कयास नहीं कर सकते। भाई तो कहते हैं वबिहादा फारकतिल हुर्रता, और इस दलील से ये जो मनकूहा बांदी है ये जुदा हो गई आजाद औरत से, यानी दोनों में फर्क आ गया। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।